लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, उष्णकटिबंधीय तूफान फ्रेडी 6 फरवरी से अफ्रीकी महाद्वीप में अपना कहर मचा रखा है और बीते सप्ताहांत के दौरान दूसरी बार जमीनी तबाही मचाई व सोमवार को मलावी में भयावह दस्तक दी। प्रबल हवाओं और भारी बारिश ने 10 जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही की है। ये तूफान इस सप्ताह 190 लोगों की जान ले चुका है और अनेक लोगों को घायल कर चुका है, जिससे मलावी की सरकार को देश में आपदा स्थिति की घोषणा करनी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार एजेंसियां तूफान फ्रेडी के रुख और रफ्तार को देखते हुए मलावी के लिए सहायता प्रयास तेज कर रहे हैं। यूएन प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बुधवार को न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में बताया कि वे मलावी में अतिरिक्त टीमों को सक्रिय कर रहे हैं, मगर कठिन मौसम परिस्थितियों ने राहत प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 2 दिनों के दौरान कम से कम 178 लोगों को बचाया जा चुका है और इन प्रयासों में विश्व खाद्य कार्यक्रम से नावों की सहायता भी हासिल हुई है। संयुक्त राष्ट्र मोजाम्बिक में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चिंतित है, जबकि ये देश हैजा के संक्रमण फैलाव से भी जूझ रहा है। यूएन प्रवक्ता ने बताया कि यूएन मानवीय सहायता एजेंसियों ने 150,000 लोगों के लिए चिकित्सा किटें भेजी हैं, जो 3 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। साथ ही त्वरित हैजा परीक्षण किटों के साथ साथ टेंट और ईंधन भी भेजे गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार पूर्ण प्रभाव के बारे में और ज्यादा जानकारी आने वाले दिनों में प्राप्त होगी। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा बुधवार 8 मार्च को नीले रंग में सराबोर हो गई थी, जब करीब 1,800 लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए थे। इस वर्ष महिला दिवस की थीम में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हर किसी के जीवन में डिजिटल मौजूदगी की बढ़ोतरी के बावजूद लैंगिक डिजिटल खाई और ज्यादा बढ़ी है। आज वैश्विक स्तर पर लगभग 63% महिलाओं को इंटरनेट तक पहुंच हासिल है, जबकि पुरुषों की संख्या 69% है। यूएन प्रमुख के अनुसार प्रौद्योगिकी से महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा एवं अवसरों का विस्तार हो सकता है, मगर इसका प्रयोग दुर्वचन और नफरत बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
बुधवार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यूएन महासभा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक प्रतिभागियों ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के सम्मान में विभिन्न रंगों के कपड़े पहने, जिनमें नीले रंग की छाप नजर आ रही थी। प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले लोगों में ज्यादा संख्या पुरुषों की है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ऑनलाइन और सूचना व संचार टेक्नोलॉजी के कारण होने वाली लिंग आधारित हिंसा से महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल माध्यमों पर भी जोखिम झेलना पड़ता है। निर्णायक कार्रवाई के बिना डिजिटल लैंगिक दरार बढ़ती सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का नया चेहरा बन जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस दिवस पर अपने संदेश में कहा कि इस दिन पूरी दुनिया में जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है, मगर उन भारी बाधाओं की पहचान भी की जाती है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत यूएन संस्था यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने ध्यान दिलाया कि महिलाएं बेहतरी के लिए संघर्षरत हैं। महिला कार्यकर्ता हर स्थान पर खड़ी हो रही हैं और उत्पीड़न व हिंसा के साथ साथ शिक्षा, कार्यस्थल और अपने जीवन के हर पहलू में भेदभाव का अंत किए जाने की पुकार लगा रही हैं। उनके अनुसार ये बात प्रमुखता से उजागर की जानी होगी कि डिजिटल अधिकार महिला अधिकार है।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी रोजा इसाकोवना ने बुधवार को सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि तालिबान शासन के दौरान देश महिला अधिकारों के लिए विश्व में सबसे अधिक दमनकारी स्थान है। हालांकि उन्होंने तालिबान प्रशासन के साथ संपर्क व बातचीत जारी रखने की अहमियत पर भी बल दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि और यूएन सहायता मिशन यूनामा की प्रमुख ने तालिबान द्वारा लागू किए गए उन आधिकारिक आदेशों की कड़ी निंदा की जिनसे अफगान महिलाओं के अधिकारों का क्षरण हुआ है। मगर यूएन मिशन प्रमुख ने देश में बदतर होती मानवीय व आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के नेताओं के साथ खुली चर्चा के लिए राजनीतिक स्थान व संभावना को बरकरार रखने का भी आग्रह किया। विशेष प्रतिनिधि ओटुन बायवा ने बताया कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद भी संयुक्त राष्ट्र देश में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने और स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संकल्पित है। उनके अनुसार तालिबान प्रशासन के साथ आरंभिक बातचीत अपेक्षाकृत रचनात्मक थी, मगर पिछले एक वर्ष के दौरान लिए गए उनके निर्णय अस्वीकार्य हैं। गौरतलब है कि तालिबान ने महिलाओं व लड़कियों पर माध्यमिक व उच्चतर स्तर की शिक्षा पर रोक लगा दी है और उनके गैर सरकारी संगठनों में काम करने पर भी पाबंदी है। विशेष प्रतिनिधि ने खेद व्यक्त किया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनके पास अफगानिस्तान की महिलाओं को तसल्ली देने के लिए संदेश कम ही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा है सोडियम सेवन के लिए नीतियां लागू करने से वर्ष 2030 तक दुनिया भर में अनुमानतः 70 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। नमक में सोडियम की खासी ज्यादा मात्रा होती है, मगर अब दुनिया भर में इसका अत्यधिक सेवन होता है जो संपूर्ण स्वास्थ्य में एक बाधक तत्व है। सोडियम का अत्यधिक सेवन भोजन, खुराक और पोषण संबंधी मृत्यु के लिए शीर्ष जोखिम वाला कारक बना देता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉ टेड्रोस एडिनम गैब्रियसस ने ये रिपोर्ट जारी होने के अवसर पर कहा कि अस्वस्थ भोजन का सेवन दुनिया भर में मौतों और बीमारियों का प्रमुख कारण है और सोडियम की अत्यधिक मात्रा का सेवन उनमें एक मुख्य कारण। सोडियम सेवन की मात्रा कम करने के विषय पर WHO की ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जिसमें दिखाया गया है कि दुनिया वर्ष 2025 तक सोडियम सेवन में 30% की कमी का लक्ष्य हासिल करने के रास्ते से भटकी हुई है। डॉ टेड्रोस ने कहा कि ये रिपोर्ट दर्शाती है कि अधिकतर देशों ने सोडियम सेवन की मात्रा अनिवार्य रूप से कम करने वाली नीतियां लागू नहीं की हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिल का दौरा पड़ने, आघात और अन्य तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बना हुआ है। इस चलन को पलटने के लिए WHO तमाम देशों से अपने यहां सोडियम का सेवन घटाने की योजनाएं लागू करने की पुकार लगा रहा है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रभुवर तू ही विशाल है, विशाल है, विशाल है। प्रभुवर तू ही महान है, महान है, महान है। प्रभुवर तू ही विशाल है, विशाल है, विशाल है। बार प्रभुवर तू ही विशाल है, विशाल है, विशाल है, प्रभुवर तू ही महान है, महान है, महान है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इटली के ट्यूरिन शहर में सन 1873 ईस्वी में स्थापित संत जोसेफ को समर्पित धर्म संघ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में धर्म संघ के आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, पुरोहितों तथा धर्म बहनों ने शुक्रवार को वैटिकन में संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। धर्म संघ की स्थापना विशेष रूप से युवा श्रमिकों की देखभाल और प्रशिक्षण के लिए 1873 ईस्वी में संत लियोनार्डो मुरियाल्डो द्वारा की गई थी। संत पापा फ्रांसिस ने तत्कालीन ट्यूरिन शहर की कठिनाइयों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि संत लियोनार्डो नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गरीबी से चिन्हित ट्यूरिन के कठोर संदर्भ के प्रति उदासीन नहीं रहे। उन्होंने चुनौती का सामना किया तथा युवा श्रमिकों के लिए काम करने हेतु तैयार हो गए। संत पापा ने कहा कि इस प्रकार एक ऐसी वास्तविकता का जन्म हुआ जिसने विगत 150 वर्षों के अंतराल में लोगों को कार्यों, विभिन्न सांस्कृतिक अनुभवों और सबसे बढ़कर ढेर सारे प्यार से समृद्ध किया। धर्म संघ में लगभग 500 धर्म समाजी और इनके अलावा संत जोसेफ की मुरियाल्डीने नामक धर्म संघ की धर्म बहनें भी शामिल हैं, जिन सबके प्रति मैं हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं तथा संत लियोनार्डो द्वारा आरोपित बीज के विकसित होने पर ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धर्म संघ की 150वीं वर्षगांठ के समारोहों के उद्घाटन के अवसर पर प्रेषित किए गए अपने संदेश का स्मरण दिलाकर संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि विगत वर्ष उन्होंने धर्म संघ के सदस्यों से आग्रह किया था कि वे समय की जरूरतों को समझने की कला सीखें तथा पवित्र आत्मा की रचनात्मकता के साथ उन्हें प्रदत्त मिशन में आगे बढ़ते रहें। संत पापा ने कहा कि आज पहले से कहीं अधिक विश्वसनीय गवाहों की आवश्यकता है, जो समय के चिन्हों को समझते हुए युवाओं का विशेष ध्यान रखें। सभी से उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने संस्थापक लियोनार्डो मुरियाल्डो के पद चिन्हों पर चलकर पितृत्व की भावना में अपने से छोटों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। धर्म संघ के सभी सदस्यों से संत पापा ने अनुरोध किया कि वे अपने जीवन और प्रेरिताई के महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान दें, जो हैं ईश्वर की दया और प्रेम का प्रसार, बदलते विश्व पर ध्यान तथा भाईचारे और उदारता की पितृत्व मिठास। विश्वव्यापी कैथोलिक धर्मानुयायियों द्वारा येसु मसीह के दुखभोग की स्मृति में इस समय मनाए जाने वाले चालीसा काल की पृष्ठभूमि में संत पापा फ्रांसिस ने पाप स्वीकार अर्थात पुनर्मिलन संस्कार के भाव को स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित किया। शुक्रवार 17 मार्च को प्रकाशित ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, पाप स्वीकार के क्षण पहला स्थान हम ईश्वर को दें। यदि ईश्वर नायक हैं, तो सब कुछ सुंदर बन जाता है तथा अपने पापों को स्वीकार करना आनंद का संस्कार बन जाता है, भय और न्याय से नहीं परंतु आनंद से पुनर्मिलन संस्कार संपादित होता है। वैटिकन में गुरुवार को लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार किया। गुरुवार अपरान परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर बताया कि लेबनान के अंतरिम प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने संत पापा फ्रांसिस के साथ मुलाकात के उपरांत वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन तथा वैटिकन विदेश सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में परम धर्म पीठ के प्रतिनिधि महाधर्माध्यक्ष पॉल गालाघार से भी मुलाकात की। वैटिकन प्रेस की विज्ञप्ति में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि परम धर्म पीठ लेबनान की जनता द्वारा सामना की जाने वाली राष्ट्र की कठिन सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रति चिंतित है, जो देश के वर्तमान संस्थागत गतिरोध से और अधिक गंभीर हो उठी है। इसलिए कि लेबनान इस समय गणतंत्र के नए राष्ट्रपति चुनाव की तत्काल प्रतीक्षा कर रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया कि संपूर्ण क्षेत्र में शांति और स्थिरता की गारंटी के लिए लेबनान के विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को मजबूत करने की आवश्यकता को भी दोहराया गया और इसी बीच लेबनान और संपूर्ण मध्य पूर्व में ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों की अपरिहार्य उपस्थिति के महत्व पर बल दिया गया। वेटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार संत पापा फ्रांसिस ने प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को सोशल लव नामक एक कांस्य कृति भेंट स्वरूप अर्पित की, जिसमें एक बालक को दूसरे बालक की मदद करते हुए दर्शाया गया है तथा जिस पर लविंग हेल्पिंग शब्द अंकित हैं। इसके अतिरिक्त संत पापा ने प्रधानमंत्री मिकाती को परमाध्यक्षीय दस्तावेजों के कई खंड, इस वर्ष विश्व शांति दिवस के संदेश की एक प्रति, मानव भ्रातृत्व पर दस्तावेज तथा स्टाट्सियो ऑर्बिस शीर्षक के अंतर्गत 27 मार्च 2020 को विमोचित एक पुस्तक प्रदान की। अपनी ओर से लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब ने संत पापा फ्रांसिस को पत्थर का एक पवित्र जल स्तूप भेंट किया, जिस पर दुखों की माता मरियम की छवि अंकित है। संत पैट्रिक के पर्व दिवस के उपलक्ष्य में 17 मार्च को आयरलैंड के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष तथा आयरलैंड के कैथोलिक धर्माधिपति आर्मक के महाधर्माध्यक्ष एमॉन मार्टिन ने संत पैट्रिक की जीवनी पर चिंतन प्रकाशित कर सबके प्रति ईश्वर की आशीष की शुभकामना की। विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया 17 मार्च को संत पैट्रिक का पर्व दिवस मनाती है। संत पैट्रिक आयरलैंड के संरक्षक संत भी हैं। संत पैट्रिक दिवस की समसामयिकता तथा विश्व और आयरलैंड के कैथोलिकों के लिए संत पैट्रिक के महत्व को प्रकाशित कर महाधर्माध्यक्ष मार्टिन ने वेटिकन न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि वे आर्मक से बात कर रहे थे, जो कि संत पैट्रिक की कलीसियाई पीठ है तथा जहां के महागिरजाघर में ही संत ने आयरलैंड की कलीसिया की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि संत पैट्रिक का पर्व दिवस आयरलैंड के कैथोलिकों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कैथोलिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि वास्तव में संत पैट्रिक आधुनिक समय के संत हैं, क्योंकि पैट्रिक मानव तस्करी का शिकार बनाए गए थे, इसलिए उनके मन में उन सभी लोगों के प्रति बड़ी सहानुभूति थी जो पीड़ित या विस्थापित थे, या उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से उत्पीड़ित या शोषित थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार संत जोसेफिन भगीता के साथ साथ हम संत पैट्रिक को भी मानव तस्करी के शिकार लोगों के संरक्षक संत निरूपित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सभी लोग संत पैट्रिक में किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जिसके पास उनके प्रति सहानुभूति है, और ऐसे व्यक्ति को जो आधुनिक दुनिया की दुर्दशा को समझ सकता है। उन्होंने कहा कि संत पैट्रिक वास्तव में आधुनिक दुनिया के लिए एक महान संत और आदर्श हैं। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।